ये जो कहानी थी फरार, ये कब उन्होंने लिखी?
फरार आई थिंक 40s में थी, मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन पहली कहानी उनकी फरार जो थी वो शायद हुई थी नखत में।
अच्छा।
और उसमें उन्होंने मतलब वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था जहाँ पे उन्होंने वो कहानियाँ लिखनी शुरू की थी, रूमानी तंजिया और मजाइया ये चीज़ें थी।
तो असल नाम तो इसरार अहमद था, तो इसरार अहमद से इब्ने सफ़ी कैसे?
असरार नारवी, असरार अहमद ये थे, काफ़ी अरसे तक इसी नाम से और दूसरे सूडोनिम से लिखते रहे, तुगरल फरगान और सनकी सोल्जर, अकरब बहारिस्तानी, ये सब इनके सूडोनिम से जिनसे लिखते रहे। इब्ने सफ़ी होने की वजह ये थी कि जिस जानर को इन्होंने चुना, जिस सिंफ का इन्होंने इंतखाब किया, जासूसी नावलों, उस पर यह हुआ था कि उस जमाने में जो थी ये नावलें जो आया करती थी ये सब तराजम होते थे इंग्लिश नावलों के, और इंग्लिश नावलों में ज़्यादातर जो तराजम बिकते थे वो फौश नावलों के होते थे। तो किसी ने ये कहा कि इस किस्म का लिटरेचर तो जब तक फौश ना हो वो बिक नहीं सकता। तो इन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, दिलचस्प चीज़ लिखी जा सकती है मकसद के साथ, और उसमें ज़रूरी नहीं कि वो फहाशी हो, उसके बगैर भी चलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने जासूसी दुनिया के अंदर पहला नावल दिलेर मुजरिम लिखा, जो विक्टर गन के नावल से माखोज़ था, आयरन साइड्स लोन हैंड उसकी उस वक्त वो कांधी। तो उन्होंने उसको अडाप्ट करके उर्दू में लिखा और उसको जो किरदार उसमें दिए इंस्पेक्टर फरीदी और सर्जेंट हमीद उस जमाने में, वो क्या कहते हैं उनके अपने ओरिजिनल थे, और उन्होंने उस कहानी को ऐसा बुना कि वो पहला एडिशन छपा तो उसके फौरन बाद दूसरा ही एडिशन भी छापना पड़ गया और पूरे इंडिया में उसकी धूम मच गई। तो वो था उसमें उन्होंने, अब ये मसला पैदा हुआ कि चूंकि ये सिंफ जो थी ये जरा सी बदनाम थी जासूसी नावल की, तो ये मुनासिब नहीं समझा कि असरार नारवी या असरार अहमद को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, बल्कि एक और सूडोनिम तलाश किया जाए। तो उस वक्त फिर अपने वालिद की के नाम की मुनासबत से, जिनका नाम सफीउल्लाह साहब था मरहूम का, तो इब्ने सफ़ी यानी सफ़ी के बेटा के नाम से उन्होंने लिखनी शुरू की। उसका नतीजा ये था कि बहुत से लोग आके मिलके भी चले आते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि ये इब्ने सफ़ी यही हैं।
अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं
उन्होंने जो जासूसी नावल लिखे? तकरीबन उनकी तादाद 245 बनती है, इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया मिला के, और इसके अलावा जो हैं वो जो उनके मजमूए हैं कहानियों के और ये सब मिला के, वो और 10-15 चीज़ें आप और किताबें उसमें शामिल कर लीजिए, तो ये तकरीबन 300 के पेटे में अगर आप आ जाते हैं तो ये इतनी हैं, और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सेलर्स हैं।
जियो न्यूज़ पे जो एक घंटे का प्रोग्राम था उसमें उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू भी उजागर हुए,
जी,
तो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
मतलब जी
एक अच्छे मुसव्विर थे।
जी जी जी
इसका मुझे इल्म नहीं था।
जी हाँ उनका मतलब शायरी का तो लोगों को पता था, बहुत से लोगों को अब भी नहीं पता होता, तो वो बाद में उनको पता चलता है। और वो था मुसव्विरी का ये था कि वो बुनियादी तौर पे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और उनके जो मुसव्विदे होते थे जिनमें वो जो मैनुस्क्रिप्ट आप कह लीजिए किताबों के, तो उनके अंदर हमेशा जो आप साइडों पे देखें तो कोई ना कोई स्केच या कोई तस्वीर बनी होती थी, और ये होता था कि जब वो सोच रहे होते थे तो उस वक्त वो ज़रूर स्केचेस बनाते थे। उन्होंने कभी उसको डूडलिंग से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन अब लोगों ने ये किया कि उनके स्केचेस को निकाल के, वो भी वेब पे मौजूद हैं, और उनको उन्होंने एक अलग हैसियत में देखना शुरू किया कि इसमें तो एक बड़े आर्टिस्ट की झलक आराम से नज़र आ रही है। और उन्होंने डेफिनेटली बड़ी पेंटिंग्स और दूसरी चीज़ें भी बनाई थी, लेकिन वो सब अवेलेबल नहीं है, जाहिर है कि उन्होंने वो दे दिला दी या रखी नहीं कोई भी, कि उनका मेन वो नहीं था, वो शौक था सिर्फ उनका। इसी तरह मौसीकी का बहुत शौक था, जैसे कि आपने दस्तावेजी फिल्म में देखा होगा कि मेरी बड़ी बहन ने बताया कि उन्होंने सीखने की भी कोशिश की थी सितार एक जमाने में, लेकिन सीख नहीं सके, क्योंकि ये तो ई सादत बजूर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाई बख्शंदा। मेरी ऐसी ही बात है कि मेहदी हसन अगर चाहें कि वो जासूसी नावल लिखना शुरू कर दें और ना लिख पाए तो ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये है कि वो शायद उसके लिए बने नहीं, इज नॉट कट फॉर दैट। तो इसी तरह इब्ने सफ़ी जासूसी नावल लिखने के लिए तो बने थे, लेकिन शायद मौसीकी के लिए नहीं बने थे। तो शौक बहुत था, सुनते बहुत थे, एडमायर भी करते थे, उसको अप्रिशिएट भी करते थे और उसके बारे में जानते भी थे, लेकिन खुद नहीं कर सके उसे।
एक फिल्म भी बनाई।
जी एक फिल्म उन्होंने बनाई थी 74-75 के, उसमें वो रिलीज हुई थी धमाका के नाम से. वो उनकी किताब बेबाकों की तलाश एक किताब है इमरान सीरीज की, उसके ऊपर उन्होंने उसको बेस किया था. उससे माखूज थी वो, माखूज इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे इमरान वगैरह जो उनकी टीम थी उसको उन्होंने हटा दिया था फिल्म से और उसको रीराइट किया था सिर्फ जफरुल मुल्क और जेमसन जो उनके दो किरदार हैं उनके इर्द गिर्द घूमने में. जफरुल मुल्क का किरदार जो था उसके लिए जावेद शेख साहब को चुना गया था उस वक्त और वो उनकी पहली फिल्म थी. जावेद शेख को इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया और जावेद साहब ने अभी उसी दस्तावेजी फिल्म में हम पर ये इंकशाफ किया. उन्होंने कहा कि मैं जब आया था तो मेरा तलफ्फुज बहुत खराब था. इब्ने सफी साहब हर सेट पे मौजूद होते थे और उनकी कोशिश ये होती थी कि मेरा वो तलफ्फुज सही करा दें. तो कहने आज जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तो उसमें उनका हाथ बहुत ज्यादा है कि लफ्ज को कैसे अदा करना है. तो ये उन्होंने उनको बताया. तो ये एक फिल्म बनी थी, ये बवजू उस जमाने में शायद अपने वक्त से बहुत पहले बन गई थी. उस वक्त लोग उसके लिए तैयार नहीं थे या क्या, बहरहाल वो बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी.
बहसियत वालिद आपने कैसा पाया?
बहसियत वालिद हम सब बहन भाइयों की इस पे राय एक ही है कि वो हमारे बेहतरीन दोस्त थे. मतलब वालिद वाली बात उनमें जो थी वो तो थी कि मतलब अगर वो शेर की निगाह से देख लेते थे तो बिल्कुल सबको सांप सूंघ जाता था. लेकिन कोई उनकी तरबियत के खिलाफ कोई बात अगर हो जाए तो वो तो उनके लिए मतलब नाकाबले कबूल होती थी. लेकिन अदरवाइज आप उनके साथ बैठ के तमाम दुनिया की बात कर सकते थे. हम लोग सारे मसाइल अपने उनसे डिस्कस कर लेते थे बिल्कुल दोस्तों की तरह. वो बेतकल्लुफी से हर चीज डिस्कस करते थे और हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे दोस्त नहीं है या कोई ऐसे शख्स है जिनसे हमें बात करने में तकलीफ हो या मुश्किल हो या उनसे हम अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर सकें. तो वो इस मामले में बहुत ही बहुत ज्यादा हमारे दोस्त थे.
सफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का.
मेरे लिए एक ऑनर है हमेशा जब भी आप मुझे यहाँ पे दावत देते हैं तो मैं अपना एक अपने लिए इज्जत अफजाई समझकर फौरी तौर पे आने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपने इस पुराने प्रोग्राम से जिससे मेरी बड़ी कल्बी और जज्बाती वाबस्तगी है इस प्रोग्राम से आवाज़ पाकिस्तान से आपको इसका इल्म है. तो ये तो मेरे लिए बड़े बड़े ऑनर की बात है कि मैं इसमें बार बार बुलाया जाता हूँ. आप यहाँ पे आप बोलने का मौका मिलता है मुझे.
मैं आवाज़ पाकिस्तान की जानिब से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और इब्ने सफी साहब की मुख्तलिफ जो खिदमात हैं उर्दू अदब में उस पर रोशनी डाली.
शुक्रिया बहुत बहुत. पहले कैपिटल डिस्ट्रिक्ट को मेरा सलाम हो, मुझे दुआओं में याद रखें.
बहुत शुक्रिया.
अल्लाह हाफिज.
This is WRPI Troy 91.5 FM. Listeners, nearly three decades after Ibn Safi's death, his cult following remains largely intact, and many literary critics recognize his services to Urdu language and literature. And as one critic said, I quote here, "He is the savior of the Urdu language, a masterful storyteller who never compromised on his principles," unquote. Even Agatha Christie is reputed to have said, and I quote here, "I don't know Urdu, but have some knowledge of detective novels of the subcontinent. There is only one original writer, Ibn Safi." This is WRPI Troy 91.5 FM, and you are listening to Awaaz-e-Pakistan.